ऑस्ट्रेलिया में लोग पहले बुशफायर सीजन और अब कोरोना वायरस महामारी की वजह से पड़े स्वास्थ्य प्रभावों से बराबर जूझ रहे हैं और इसी को देखते हुए 180 से भी अधिक स्वास्थ्य और चिकित्सा पेशवरों ने प्रमुख पर्यावरण कानून में कई सुधार करने के लिए फेडरल सरकार का आह्वान किया है और वो चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा ना कर पाने पर कोरोना वायरस महामारी की तुलना से भी अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो जाने का घातक खतरा बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या EPBC एक्ट की समीक्षा हो रही है और प्रमुख स्वास्थ्य पेशेवर और समूह चेतावनी दे रहे हैं कि कानूनों में सुधार करने में विफलता का अर्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स फॉर पर्यावरण जलवायु और स्वास्थ्य गठबंधन द्वारा आयोजित एक खुले पत्र में वो फेडरल सरकार से पर्यावरण और जैव विविधता सुरक्षा में सुधार के लिए 10 साल की समीक्षा प्रयोग के लिए कह रहे हैं। फियोना आर्मस्ट्रांग जलवायु और स्वास्थ्य गठबंधन की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं। वो कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए EPBC अधिनियम अपने उद्देश्यों में विफल रहा है।
Australia's got the second highest rate of biodiversity loss in the world. We're globally recognized as a land clearing and deforestation hotspot, and our water resources are in decline on the driest continent on earth. So these are huge impacts on our natural environment on which we depend.
वो कहती हैं कि सभी का हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए गंभीर प्रभाव है।
The health of human beings is entirely dependent on the natural world, and the failure to enact effective environment laws in Australia is meaning that the foundations for human health and well-being are being undermined.
Dr. Catherine Baraclo डॉक्टर्स फॉर द एनवायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए विक्टोरियन चेयर हैं। वो कहती हैं कि बुशफायर सीजन में हुई हानि एक प्रमुख उदाहरण है कि पर्यावरण की रक्षा करने में विफल रहने से मानव स्वास्थ्य पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सिर्फ धुएं के प्रदूषण के कारण ही 400 से अधिक मौतें हुईं।
People lost their lives, and that was very clear and easily recognised. Many people were displaced. The mental health impacts are likely to be substantial and evident for a long time. But more recently, there's been some research that's come out that's shown that the smoke pollution itself also caused a lot of adverse health impacts. So there were over 1,300 presentations to emergency departments with asthma just because of the smoke. Over 3,000 people hospitalized for heart and lung problems, and over 400 excess deaths just from the smoke alone.
इस खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि वनों की कटाई जैसी प्रथाओं के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने से कोरोना वायरस महामारी की तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों की और उनकी गंभीरता में वृद्धि हो सकती है। फियोना आर्मस्ट्रांग समझाती हैं कि उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन के लिए जंगलों को हटाते ही अन्य सभी प्रजातियां जो कि अपने संरक्षण और भोजन के लिए उस जंगल पर निर्भर हैं वो अस्वस्थ होती हैं और इसका असर मनुष्यों पर पड़ता है।
When you remove forests for agricultural production, for example, that means that all of the other species that relied on that forest for protection and food, that's lost for them. So we're undermining the health of other species. That means that they are less healthy, they're more inclined to contract diseases themselves. And as we move closer into the habitat of other species, it makes it more likely that those diseases can jump from animals to humans.
Dr. Catherine Baraclo का कहना है कि हस्ताक्षरकर्ता तीन प्रमुख नीतिगत बदलावों के लिए कह रहे हैं जो इस मान्यता के साथ शुरू हो कि मानव स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को पर्यावरण कानून में सुधार के लिए केंद्रित होना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे पर्यावरण कानून को विकसित करने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों को सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए.
There are so many flaws in the law. You know, if, for instance, it was enacted back in 1999, and at that point it wasn't clearly recognised that climate change and species loss and human health were really intricately connected. And you know, as I mentioned before with the bushfires, it's really clear now that all three are intertwined, and that, you know, we need to think about climate change in environmental protection. But climate change is not considered by our environmental law at all. We feel that we need an entirely new generation of environmental law, that just making small reforms are not going to be good enough. So that's another thing we're calling for. And the third request or recommendation is that the institutions responsible for developing and delivering our environmental law must include public health experts.
वो कहती हैं कि इस खुले पत्र की सिफारिशों को लागू करने की उपेक्षा करने से ऑस्ट्रेलिया न केवल जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए असमर्थ होगा, बल्कि मानव स्वास्थ्य और भलाई के लिए इसका क्या अर्थ होगा, इसके समाधान के लिए भी वो तैयार नहीं होगा.
We need to make sure we're, you know, ready for the next crisis when it comes, but you know, the predictions suggest that we won't be able to keep up with the pace of the crises if we don't address the root causes. And I think that's true for, you know, certainly the climate change impact, but probably for pandemics as well. It really doesn't make sense to be fighting each individual infectious disease. You've really got to look at why we're seeing more of them and what we can do about it going forward.
समीक्षा पैनल की ड्राफ्ट रिपोर्ट जून में जारी होने की उम्मीद है. SBS न्यूज़ के लिए एमी हॉल की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता परार ने. SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.